ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। भारत ने पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वराइज को सम्मन भेजा है और कहा है कि उसके सैन्य राजनयिकों को भारत छोड़ना होगा। सूत्रों के अनुसार ये सम्मन पिछले रात भेजा गया। ये कदम हाल ही में पहलगाम आतंकवादी हमले के आलोक में भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कई कड़े कदमों के बाद उठाया गया है। इससे पहले भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए। प्रधानमंत्री आवास पर कल शाम हुई मंत्रिमंडल की सुरक्षा कार्य समिति की बैठक में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई और सभी सुरक्षा बलों को कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। पाकिस्तान के साथ 1960 का सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है और तत्काल प्रभाव से अटारी एकीकृत सीमा चौकी बंद कर दी गई है। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी।
The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025.
विदेश सचिव ने बताया कि सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं मिलेगी। उनके पहले से जारी वीजा रद्द माने जाएंगे। इस वीजा के तहत भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। सरकार ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर आज दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार ये बैठक संसद भवन परिसर में शाम 6 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को हमले के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा वह इस घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में भी उन्हें जानकारी उपलब्ध कराएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई जाएगी।
मैं पूरे परिवार और हमारी पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं, यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा।
इस बीच जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले के तंगमार्ग क्षेत्र में कल रात आतंकवादियों सुरक्षा बलों के बीच हुई गोलीबारी के बाद तलाशी अभियान जारी है। सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त दल ने आज सवेरे आतंकरोधी गतिविधियों को फिर से शुरू किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान डूडू बसंतगढ़ इलाके में गोलीबारी हुई। अंतिम समाचार मिलने तक तलाशी अभियान जारी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री मधुबनी के झंझारपुर से देश की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। वह 13,480 करोड़ रुपए लागत की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में विशेष श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 भी प्रदान करेंगे। श्री मोदी आज मुंबई के बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय इस्पात कार्यक्रम इंडिया स्टील 2025 का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रातभर हुए रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 2 लोग मारे गए और 54 घायल हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। मीडिया खबरों के अनुसार हमलों से शहर में कई जगह आग लग गई। क्षतिग्रस्त आवासीय इमारतों के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। श्रीलंका में इस वर्ष के स्थानीय सरकार के चुनावों के लिए डाक मतपत्र देने का कार्य आज से शुरू हो गया है, जिसमें 6,48,000 से अधिक योग्य मतदाताओं के अपने मतपत्र मेल द्वारा डालने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।